الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مضمون ہے جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے انشاءاللہ ایک سیریز جو ہے ہمارے بیانات کی ہو کہ ہم ایک ٹاپک کے تحت بیان سنتے چلے جائیں اور ہم سب انشاءاللہ کچھ سیکھیں۔ ہم انشاءاللہ قرآن سے ہی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تو کیا شان ہے، انشاءاللہ آج کچھ قرآن پاک کی جو تاثیر ہے انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کے بارے میں بھی جانیں گے جس میں رب عزوجل نے ایمان والوں سے ڈائریکٹلی بات کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں مور دین 6600 آیات ہیں مگر 89 آیتیں وہ ہیں اپراکسیمیٹلی جس میں اللہ کریم نے ہم سب سے براہ راست بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والوں کہہ کر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے، کم از کم وہ تو ہم جان لیں۔ تو انشاءاللہ قرآن کی باتیں ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس میں ہم یہ آیتیں بھی کور کریں گے۔ تقریباً قرآن پاک میں 100 کے قریب واقعات ہیں، اسٹوریز آف قرآن ہیں، ہم انشاءاللہ وہ بھی گریجولی کور کریں گے۔ ویسے میں مشورہ دوں گا، یہ بیان تو ظاہر ہے کہ اللہ نے چاہا مہینوں چلتے رہیں گے اور اس میں جا کے چیزیں جا کے کور ہوں گی، لیکن اگر آپ واقعی قرآن کے ایسنس کو لینا چاہتے ہیں تو ان دو چیزوں کو پڑھ لیں، 89 قرآن کی آیتیں جس میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، اور قرآن کے 100 واقعات۔ اچھا، ان دونوں کو الحمدللہ علماء کرام نے ہمارے لیے آسان کر کے قرآن سے ایکسٹریکٹ کر کے الگ کتابیں دے دی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے اے ایمان والو، یہ کتاب بھی آپ دعوت اسلامی .net سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ایک کتاب کا نام ہے عجائب القرآن غرائب القرآن، یہ قرآن کے واقعات ہیں۔ یہ دونوں کتابیں بہت بہت بڑی نہیں ہیں، اگر آپ روز آدھا گھنٹہ دے دیں تو ایک آیت پڑھ لیں ایک واقعہ پڑھ لیں، آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، قرآن انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوں گے، قرآن کا میسج ڈائریکٹلی لے رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے الحمدللہ یہ دونوں پروگرام، یہ دونوں چیزیں یوٹیوب پر بھی بیان کر کے ہم نے ڈال دی ہیں، اگر اس کو وہاں سرچ کرنا ہے تو ایک پروگرام مدنی چینل پر ہوا تھا جس کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے، جس میں قرآن کے واقعات ہیں، اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو قرآن کے سارے واقعات مل جائیں گے۔ 15 منٹ کا ایک واقعہ ہوگا، اس کا میسج آپ سن سکتے ہیں، بچوں کو بٹھا کے سنا سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ ہمارا پروگرام تھا جس کا نام تھا اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، جس میں یہ اے ایمان والوں آیتیں، وہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے بنیں۔ آج قرآن کتنی تاثیر رکھتا ہے، آج جو ٹاپک ہے قرآن کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے، قرآن کیا کمال کی کتاب ہے، اس بارے میں انشاءاللہ چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہیں آپ نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے اسلام قبول ہوا ان کا، کہتے ہیں غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہو گئے تھے، میں اہل مکہ کی طرف سے ان قیدیوں کے لیے نیگوشیشن کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا تھا۔ جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک مسجد کے باہر سے سنائی دے رہی تھی، نبی پاک سورہ وطور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں بھی قرآن پاک کی تلاوت سننے لگا، مسلمان نہیں تھے مگر نبی پاک کی زبان سے قرآن کی تلاوت، کہتے ہیں بڑا انسپائرڈ ہوا اور میں بھی تلاوت قرآن سننے لگا، زبان محبوب خدا کی تھی اور کلام رب رحمان کا تھا۔ بس پھر کیا تھا، وہ قرآن کی آیتیں دل میں تاثیر کا تیر بن کر اترتی چلی گئیں، اور جب نبی پاک اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع، मा लहू मिन दाफ़िअ, बेशक तेरे रब का अजाब ज़रूर वाक़े होने वाला है, उसे कोई टालने वाला नहीं। इन आयात को सुनकर मेरा दिल ऐसे हो गया जैसे अभी फट जाएगा, मुझे यूं लगा कि मैं कदम भी नहीं उठा सकूंगा, इससे भी पहले ही मुझ पर अजाब बरस जाएगा। बस मैंने अल्लाह पाक के अजाब से डर कर उसी वक्त ईमान कबूल कर लिया। कुरान अपना इम्पैक्ट रखता है, कुरान अपनी तासीर रखता है। बात यह है कि सही पढ़ने वाला हो, अंडरस्टैंड करने वाला हो, दिल की दुनिया बदल देता है। और ऐसे बेशुमार वाकयात हैं। याद रहे, कुरान में अजीब तासीर है। ये प्यारा कलाम दिलों को नरम करता है, भटके हुओं को राह हिदायत देता है। इसमें अगले पिछलों की खबरें हैं। ये अल्लाह पाक की मजबूत रस्सी है, ये हिकमत वाला कलाम है। हदीस पाक में है, कुरान की बरकत से ख्वाहिशात मिटती हैं, कुरान के अजायबात ख़त्म नहीं होते। कुरान करीम के मुताबिक कोई बात करे वो सच्चा है, जिसने कुरान पर अमल किया वो सवाब पाएगा, जो कुरान करीम के मुताबिक फैसला करे वो इंसाफ करने वाला होगा, और जो कुरान करीम की तरफ बुलाए ज़रूर वो सीधी राह की तरफ बुलाने वाला होगा। एक हदीस पाक में फरमाया, जिस तरह अल्लाह पाक अपनी तमाम मखलूक से अफजल है, ऐसे ही अल्लाह पाक का कलाम भी बाकी तमाम कलामों से अफजल व आला है। यानी अल्लाह पाक का जो मर्तबा मखलूक में है सबसे अफजल व आला है ना, तो कलाम इलाही का जो मर्तबा है वो दुनिया के तमाम कलाम, तमाम किताबों में अफजल व आला वो कलाम है। सुभान अल्लाह, वो रब का कलाम है। याद रहे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि कुरान मजीद फुरकान हमीद किस तरह छोटी सी यानी चंद आयतों के जरिए क्या कुछ हमें अता फरमाता है। हजरत जैद बिन असलम रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, एक मरतबा एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। प्यारे आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रदी अल्लाह तआला को फरमाया, इस नए आने वाले शख्स को कुरान करीम सिखाओ। उस सहाबी ने इस शख्स को सूरह जिलजाल सिखाना शुरू की। जब उन्होंने सूरह जिलजाल की सातवीं आयत सिखाई तो वो शख्स कहता, बस अब मुझे काफ़ी है, सात आयतें सीख ली हैं, बहुत है। उन साहबी ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया कि हुजूर, इन्होंने सिर्फ सात ही आयतें सीखी हैं और कहते हैं मुझे काफ़ी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे छोड़ दो, इसे फकाहत यानी दीन की समझ मिल गई है। यानी सात आयतें सीखकर, क्योंकि आयतें तो कुरान की हर आयत में खजाना है ना, जिसने दिल से सीख लिया, समझ लिया, मैसेज ऑफ कुरान ले लिया, वो तो सात आयतें उसके लिए जिंदगी भर के लिए काफी हो जाती है। तो कुरान ऐसा खजाना है, सुभान अल्लाह, मेरे रब का कलाम है कुरान। वाह क्या बात प्यारे कुरान की, मुस्तफा पर हुआ है ये नाजिल, इसमें हर शय का है बयान शामिल, सबसे अफजल किताब है कुरान। वाह क्या बात प्यारे कुरान की। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बड़ा ही कमाल का वाक्य जो मैं बात कर रहा हूं ना कि कुरान दिलों की दुनिया कैसे बदलता है। अल्लाह करे मैं और आप कुरान से दोस्ती कर लेना, तो तौबा करने के लिए, सुधरने के लिए, अल्लाह की तरफ रुजू लाने के लिए कुरान क्या कमाल का किरदार अदा करता है। हजरत अबू हाशिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते, एक मरतबा में बसरा जाने के लिए एक कश्ती में सवार हुआ। उस कश्ती में एक मर्द भी था, उसकी कनीज भी थी। उनका प्लान कुछ और था, बुरे काम करने का प्लान था। वो कहते जब कश्ती आगे बढ़ी तो उस मर्द ने अपनी कनीज से कहा, ज़रा शराब निकालो। शराब लाई गई, वो मर्द कश्ती में बैठ कर शराब पीने लगा। अपनी कनीज को कहा कुछ गाना सुनाओ, वो कनीज जो है वो गाना गाने लगी। अब थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे देखा, अबू हाशिम रहमतुल्लाह ताला कहते कि आप ये गाना गा रही है, आपके पास इससे अच्छी कोई चीज़ है? वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने उनके सामने कुरान पढ़ना शुरू किया। अब कुरान में जो रिदम है, कुरान में जो खूबसूरती है, कुरान जो दिलों को इम्पैक्ट डालता है, क्या खूबसूरत आयतों का उन्होंने इंतखाब किया। उन्होंने कुरान पाक की सुभान अल्लाह कौन सी सूरह पढ़ी, सूरह तकवीर। ये हिला देती है सूरत, अगर समझ के पढ़े ना बंदा कि जिसमें किस तरह कयामत का रब ने बयान किया। अब तीसवें पारे में ये सूरत है, आपने तिलावत शुरू कर दी, इद शम्स कुव्विरत व इदन नुजूमुन कदरत व इदल जिबालु सुय्यरत। तर्जमा क्या है इसका, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा और जब तारे झर पड़ेंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। इन आयात को सुनकर वो शख्स रोने लगा, जो शराब पी रहा था वो फौरन लपकपकपी तारी हो गई, रोने लगा। हजरत ने जब ये आयत तिलावत की, व इदस सुहुफ नुशरत, और जब नामा अमाल खोले जाएंगे, तो वो कहने लगा, ऐ कनीज मैं तुझे अल्लाह पाक की रजा के लिए आजाद करता हूं, इस शराब को बहा दो। फिर उसने मुझे करीब बुलाया और कहने लगा, मेरे भाई तुम क्या कहते हो, क्या अल्लाह पाक मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह वाले थे, क्या जवाब भी कुरान से ही दिया और कुरान की वो आयत तिलावत की, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सुभान अल्लाह, तर्जमाए कंजुल इरफान, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब साफ सुथरे रहने वालों को पसंद फरमाता है। बस उस शराब पीने वाले गाने बाजे में मुनहमिक शख्स ने जब ये सुना कि रब तौबा करने वालों को कबूल फरमाता है, मोहब्बत फरमाता है, चलती कश्ती में उस बंदे ने अल्लाह से तौबा कर ली। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान इस तरह दिलों पर असर डालता है। याद रहे, कुरान का एक नाम हिकमत भी है, यानी ये वो किताब है जिसको पढ़ने से हिकमत व दानाई मिलती है। कुरान करीम का एक नाम सिरात मुस्तकीम है, यानी वो किताब है जो भूले भटकों को सीधे रस्ते का मुसाफिर बनाती है। कुरान करीम का एक नाम नूर है, यानी वो अजीम किताब है जो नूर बांटती और दिलों को रोशन करती है। एक सहाबी रसूल हैं, हजरत साबित बिन कैस रदी अल्लाह तआला, उनका घर जो है वो रात भर चमकता रहता था, रोशन रहता था। आजकल तो हमारे घरों में लाइटें होती हैं, उस जमाने में तो लाइटें नहीं होती थी, लोग रात को चिराग बंद कर देते थे क्योंकि रात को लाइट की जरूरत नहीं होती थी। तो लोग हैरान होते थे कि हजरत साबित बिन कैस का घर क्यों चमकता है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए कि हुजूर रात भर साबित बिन कैस का घर जगमगाता है। अच्छा, साहबा भी कमाल के थे ना, वेन एवर दे वॉन्ट टू आस्क समथिंग, एनी अनयूजुअल थिंग, वो कहीं और नहीं जाते थे, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते थे। उनको पता था यहाँ से बड़ा प्यारा जवाब मिल जाएगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यकीनन साबित बिन कैस रात को सूरह बकरा की तिलावत करते होंगे। साहबा गए, जाकर पूछा, साबित बिन कैस ने कहा कि हाँ, मैं वाकई घर में रात को सूरह बकरा की तिलावत करता हूँ। तो यह है कुरान, ये है कुरान का नूर। सुभान अल्लाह, छोड़ो ये जुल्मतों के शिकवे करो न हरदम, छोड़ो ये जुल्मतों के शिकवे करो न हरदम, है रोशनी की ख्वाहिश कुरान पढ़ के देखो। तो कुरान पाक की क्या बात है। अब कुरान पाक जहाँ तबीयतों पर असर डालता है, इंसान की कैफियतों पर असर डालता है, वह कुरान करीम अमराज को भी दूर करता है। जी हाँ, कुरान करीम बातनी अमराज को भी दिलों के साफ करता है, जिस्मानी अमराज को भी कैसे दूर करता है। अब जरा सुनिएगा, कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नासु कद जाअतकुम मौइदतुम मिन रब्बिकुम वशिफाउन लिमा फिस्सुदूर। तर्जमाए कंजुल इरफान, ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और दिलों की शिफा आ गई। मशहूर मुफस्सिर कुरान हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला इस आयत के तहत फरमाते हैं, कुरान करीम रब की तरफ से बंदों की रूहानी परवरिश का जरिया है। दिल की बीमारियां जो इनपुट होता है ना, दिल की जो बातनी बीमारियां हैं, फरमाया जहालत, शक, शिर्क, निफाक, बुरे अकीदे, बुरे अखलाक, हसद, कीना, हवस, दुनिया की हिर्स, अदावत, ये तमाम गुना जो हैं, इन कुरान करीम इन सब की इस्लाह करने वाला है। अल्लाह करे कि हम कुरान को पढ़ें और दिल से पढ़ें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कैसे इम्पैक्ट डालता है। एक और वाकया सुने, अल्लाह इन तौबा करने वालों के सदके हमें भी सच्ची तौबा अता फरमाए। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं, एक इबादत गुजार बुजुर्ग थे, 40 साल तक बर्रे आजम अफ्रीका का बड़ा मशहूर मुल्क सूडान, वहाँ एक गार में रहकर अल्लाह की इबादत करते थे। कहते हैं मैं उस गार में था तो एक शख्स उस गार में आ गया और उसके पास खाना भी था, शराब भी थी। वो आकर बैठ गया, उसने मुझे देखा नहीं, मैं उसे नजर नहीं आ रहा था। तो उसने शराब पीना जब जैसे ही शुरू की, बर्तन उठाया तो मैंने ऊंची आवाज में कुरान पाक की ये आयत तिलावत की। ये आयत जो है ना, कई लोगों की तौबा का सबब बनी है। बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो बदले हैं, जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ना, वो ये एक कुरान पाक की आयत है। कभी मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह इस आयत को मजीद इसके वाकयात बयान करूंगा। हजरत कहते हैं कि मैंने उस शराबी के सामने गार में बैठ कर कुरान की आयत पढ़ी। जरा इस आयत का तर्जमा भी सुनिएगा, आयत क्या है, पारा 27 है, सूरह हदीद आयत नंबर 16। अल्लाह फरमाता है, अलम यअनि लिल्लज़ीन आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद और उसके हक के लिए झुक जाएं? क्या अब भी वो वक्त नहीं आया? कुरान ने गोया हिलाया है, झंझोड़ा है। अब उस जमाने के लोग तो अरबी समझते थे, तो वो कहते हैं जैसे ही मैंने वो आयत पढ़ी तो नौजवान रुक गया, शराब पीने से दाएं बाएं देखा, उसको कोई नजर नहीं आया। जैसे ही दोबारा उसने बर्तन शराब का उठाया, मैंने फिर ये आयत पढ़ी, अलम यअनिल लदीन आमनु अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद और उसके हक के लिए झुक जाए? अब की बार तो जब कुरान करीम उसने सुना तो उसके दिल में ये बातें तासीर का तीर मतर बनकर उतर गई, हाथ से शराब गिर गई और कहने लगा, बला वल्लाही कद आन, क्यों नहीं खुदा की कसम वो वक्त आ गया है, मेरा दिल अल्लाह की तरफ झुक गया है। बस ये कहता जा रहा था, वो गार से निकल गया। वो बुजुर्ग कहते हैं, पीछे पीछे चलने लगा कि देखो अब इसकी तौबा क्या रंग लाती है। उसकी जबान पर एक ही जुमला है, बला वल्लाही कद आन, क्यों नहीं खुदा की कसम तौबा का वक्त आ गया है। बुजुर्ग कहते हैं, इसी कैफियत में जा रहा था, आगे बहुत बड़ा दरिया आ गया, मगर वो अपनी कैफियत में था, बगैर सोचे समझे दरिया पर पैर रखा, मगर मैं देखकर हैरान हो गया कि वो दरिया के ऊपर से चलता हुआ निकल गया। जो थोड़ी देर पहले शराब पी रहा है, सच्ची तौबा करता है, अल्लाह उसको कौन सा मर्तबा अता फरमा देता है। तो यह है कुरान, यह है कुरान की तासीर, यह है कुरान का इम्पैक्ट। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे घरों में बरसों से कुरान है, शायद हर साल कुरान खानी करते हैं, पूरा हर साल रमजान में तिलावत करते हैं, बट हम अंडरस्टैंड नहीं करते, इसको समझने की कोशिश नहीं करते, इसका एक्सेंस, इसके इत्र लेने की कोशिश नहीं करते। वरना वल्लाही जिस दिन आप कुरान समझ कर पढ़ने लग गए, आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। जिनको कुछ कुछ कुरान समझ आता है ना, जब कभी इमाम साहब तिलावत कर रहे हैं और किसी ऐसी कुरान पाक की खूबसूरत आयत पर पहुंचते हैं, सूरत पर पहुंचते हैं, जी नहीं चाहता इमाम साहब रुकू में जाएं, जी चाहता ये और पढ़ते रहें, अल्लाह की बातें और बताते रहें। तो है मेरे प्यारे स्नेह भाई, ये है कुरान और ये है कुरान का ख़जाना। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह कुरान पाक हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट डालता है। कई लोग बीमार होते हैं, हम में से बहुत सारे लोग बीमार होंगे, कुरान में हमारे जिस्मानी शिफा कैसी है, अब जरा ये सुनिएगा। कुरान पाक में खुद रब फरमाता है, वनुनज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हम कुरान में वो चीज़ उतारते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खैरुद्दवाइल कुरआन, यानी बेहतरीन दवा कुरान करीम है। कुरान की मुख्तलिफ आयतें हैं, मुख्तलिफ सूरतें हैं, जिसको पढ़कर दम किया जाए अपने आप पर या मरीज पर, तो उसे कैसे शिफा मिलती है। और ये सहाबाए किराम का तरीका, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम का मामूल क्या था, सुनिए प्यारे आका अलैहिस्सलाम का ये मामूल, के सहाबाए किराम और बड़े बड़े औलिया किराम तकरीबन 1450 सदियों से उम्मत के मुजर्रबात यानी तजुर्बाशुदा कामों में है कि कुरानी आयात पढ़कर दम किया जाए तो अल्लाह पाक शिफा अता फरमाता है। मुसलमानों की अम्मी जान बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहले खाना में से जब कोई बीमार होता तो आप अलैहिस्सलाम मुअव्वज़ात यानी सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर उस पर दम किया करते थे। तो मैं आप सबको मशवरा देता हूँ, रोज सुबह अपने घर से जब निकलें या फजर की नमाज पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद पाक, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने हाथ पर दम करें और पूरे जिस्म पर फेर लें। अपने बच्चों पर स्कूल जाने से पहले दम करें, मदरसे में जाने से पहले दम करें, ये गोया उनका एक हिसार है। रात को सोते वक्त ये अमल कर लें, ये खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम का अमल है। ये इंशाल्लाह बलाओं से मुसीबतों से आपकी हिफाजत भी करेगा और ये बीमारियों को भी दूर करेगा। एक मरतबा एक सहाबी ने बिच्छू काटने पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, अल्लाह पाक ने उस मरीज को शिफा अता फरमा दी। एक सहाबी के कबीले में एक पागल शख्स था जिसको लोग जंजीरों से बांध कर रखते थे। सहाबी रसूल ने 3 दिन सुबह शाम 3-3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, अल्लाह पाक ने उसे पागलपन से शिफा अता फरमाई। अल्लाह के कलाम में कमाल है, हम काश अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करें और इसकी बरकतें लूटें। एक बार हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला को कैसर रोम के बादशाह ने खत लिखा, मेरे सर में दर्द है और दाइमी दर्द है, ठीक ही नहीं होता है। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने उसको एक टोपी भेज दी। अच्छा, कमाल ये था, जब वो टोपी पहनता दर्द खत्म हो जाता, जैसे ही टोपी उतारता दर्द फिर शुरू हो जाता। उस बादशाह ने कहा, है क्या इस टोपी में? जब उस टोपी को खोला गया तो उस टोपी में एक कागज मिला जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था, हजरत उमर ने लिख के भेजा था। तो इससे यह भी पता चला कि तावीज़ात जो है उसमें कोई हर्ज नहीं है कि उन तावीज़ात में अल्लाह का नाम हो, उसमें कुरानी आयात हो। बाज़ औक़ात माद अल्लाह जादू और इस तरह की चीज़ें, उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है, मगर कुरानी आयात अल्लाह के नाम पाकीज़ा नामों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकतें मिलती हैं और ये सहाबा-ए-किराम और हमारे बुज़ुर्गों के तरीके से साबित है। अब आखिर में मैं चाहूंगा मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो इंशाल्लाह आपको काम आएगी कि कुरान करीम की किन किन सूरतों से किन किन चीजों से फायदा होता है, आपके कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, आपकी कौन सी बीमारियां हल हो सकती हैं। घर में बहुत सारे मसाइल होते हैं, हम बाजों का टेंशन में होते हैं कि यार इसका कोई वजीफा मिल जाए, कोई दम मिल जाए, तो डायरेक्टली कुरान करीम जो है किन किन चीजों पर इंशाल्लाह इंपैक्ट डालेगा और आपको फायदा होगा, आप चाहें तो इसे रिकॉर्ड कर लें। अब सुनते हैं उलमाए किराम ने अहादीस की रोशनी में और अपने तजर्बे से कुरानी सूरतों की अलग अलग तासीरें बयान की हैं। अब सुनते जाइए, सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल हो जाती है, सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है, आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है, सूरतुल कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा, वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसके हरूफ की तादाद के बराबर यानी पढ़ने वाले के गुनाह बख्श दिए जाते हैं, सूरह दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर होती है, जो मरने के करीब हो उस पर सूरह जासिया का दम करने से इंशाल्लाह ईमान पर मौत नसीब होगी, सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर व बरकत के लिए मुफीद है, सूरह कौफ, कई लोग होते हैं जिनकी फसलें होती हैं, बाग होते हैं, तो उसके बारे फरमाया कि सूरह काफ पढ़ने से बाग में फलों की कसरत होती है, सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासिद पूरे होते हैं, सूरह वाकया जो शख्स रोजाना पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा, सूरतुल मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अजाब कब्र से महफूज रहेगा, सूरतुल मुज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है, जो बच्चे हिफ्ज कर रहे होते हैं उनके लिए सुनिए, सूरतुल मुद्दसिर को पढ़कर हिफ्ज़े कुरान की दुआ मांगने से कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है, मरीज के पास सूरह मुजादला पढ़ने से दर्द में आराम मिलेगा, सूरह लैल, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं कुछ लोगों को, तो सूरह लैल पढ़कर मिर्गी के मरीज के कान में दम करने से फायदा होता है, सूरह रहमान लिखकर पीना तिल्ली यानी स्प्लीन के मर्ज में मुफीद है, सूरह अन्नाज़िआत पढ़ने की बरकत से जान निकलने की तकलीफ नहीं होती है, सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा, सूरह अलम नशरा जिस माल पर पढ़कर दम कर दिया जाए उसमें खूब बरकत होती है, सूरह तीन मरतबा पढ़ने से अखलाक व किरदार बेहतरीन होते हैं, सूरतुल अलक में जोड़ों के दर्द का इलाज है, बुजुर्ग बैठे होंगे जोड़ों में दर्द होता है तो सूरह अलक पढ़ें तो इंशाल्लाह जोड़ों के दर्द का इलाज है, जो कोई सुबह शाम सूरह कदर इन्ना अंजलना हुफी लैलतुल कदर पढ़े अल्लाह करीम उसकी इज्जत बढ़ा देगा, बर्स और यरकान ये भी बड़े मर्ज हैं, फरमाया सूरह बय्यना बर्स और यरकान का इसमें इलाज है, जिस आदमी या जानवर को नजर लगी हो उस पर सूरह आदियात का दम कर दें ये बड़ा मुफीद है, सूरह कारिया पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है, जिस पर कर्ज हो गौर से सुन ले, सूरह तकासुर 300 बार पढ़ ले तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कर्ज अदा हो जाएगा, सूरह असर पढ़ने से गम दूर होता है, फरमाया कोई दुश्मन का खौफ हो सूरह कुरैश पढ़े तो उससे इंशाल्लाह जान की हिफाजत होती है, और सुभान अल्लाह सूरह फलक और सूरह नास से जिन हासिदीन और शैतान से हिफाजत रहती है, कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास ये तिहाई कुरान के बराबर है, कोई 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले उसे पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, तो यह है मेरे रब का कलाम, कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान से इलाज कीजिए, कुरान से दोस्ती कीजिए, कुरान से दिलों की कैफियत को बदलिए, कुरान की तिलावत के साथ साथ तर्जमा कुरान और तफसीर कुरान, बहुत खूबसूरत तफसीर कुरान आपको रेकमेंड कर देता हूँ, उस तफसीर कुरान का नाम है सिरातुल जिनान, ये बहुत आसान उर्दू में मौजूद है, इसको भी चाहें तो dawatislami.net से डाउनलोड कर लें या मकतबतुल मदीना से परचेज कर लें, इंशाल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी, अल्लाह पाक हमें नेकियाँ कमाने का जज्बा नसीब फरमाए, सल्लु अलल हबीब।